ओम चंदी। आज की मुरली रिपीट करेंगे, बहुत अच्छी थी ना, याद कर लो। तब तक मैं याद दिलाता हूँ आपको, सवेरे सवेरे आकर बाबा रोज हमें जगाते हैं, कुछ अच्छी चीज सिखाते हैं। एक बार अव्यक्त बाबा से पूछा किसी ने कि आप रोज रोज वही बात सुनाते मुरलियों में, प्रैक्टिकल बात है पूछा गया। बाबा ने कहा जो बात सुनाई ये उदाहरण हो गई, पहली बार सुनाई मैं आत्मा हूं, हो गई धारण, हो गई हो तो ना सुनाए। तो देखो बाबा हमें रोज पढ़ाता है, भगवान को भी मेहनत करनी पड़ती है ना अपने बच्चों से, उन्हें देवता बनाने के लिए। कल कहा था ना फैक्ट्री खोली है, कितने अच्छे फैक्ट्री खोल दी मनुष्य को देवता बनाने की, कांटों को फूल बनाने की। और फैक्ट्री में मटेरियल कौन सा है, ज्ञान, माल आता है ना कच्चा, उससे दूसरी चीजें बनती है फैक्ट्रियों में। तो फैक्ट्री खोल दी आज बाबा ने कहा, शुरुआत मैं करता हूं फिर आपको याद आएगा। तुम्हारी चलन देवताओं से भी अधिक रॉयल होनी चाहिए, क्योंकि तुम, इतनी अच्छी बात, भगवान के भी बच्चे निराकारी और ब्रह्मा के बच्चे, कितनी बड़ी चीज है। तो हमारा कुल ही बहुत रॉयल है, हमें ये चिंतन में रखना है, तो हमारी एक्टिविटी आप ही रॉयल हो जाएगी, हमें कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। हम केवल इस चिंतन में रहें, इस स्वमान को जगाएं, हम बहुत बड़े कुल के हैं। ऐसा बड़ा कुल चारों युगों में और कभी किसी को नहीं होता। कल मुझे एक बात के चिंतन से बहुत नशा चढ़ रहा था। शाम को मेरा बहुत अच्छा रहता है, जब मैं शाम को यहाँ होता हूँ फ्री तो बहुत आनंद आता है। तो एक सुंदर विचार आ गया शाम को 6 बजे, हमारा पूरा कल कितना सुंदर बीता है। बिल्कुल बहुत गुड फीलिंग होने लगी, एक जन्म नहीं पूरा कल्प हमारा बहुत सुंदर बीता है। अच्छे अच्छे पार्ट बजाए हैं विश्व के ड्रामा में, इतिहास में, कभी धर्म के काम आए, कभी राजनीति में काम आए, देश को संभाला, किसी ने स्वतंत्रता में मदद की, कितना सुंदर पाठ चलता आया चारों युगों में हमारा। सुख शांति से भी भरपूर रहे, निरोगी काया भी रही, ये तो रोग अभी के हैं ना, ये आखिरी 1-2 जन्म मुश्किल से समझ लें, उसे पहले रोग कहाँ होते थे। मनुष्य को बुखार कभी कभी आता था, कोई छोटी मोटी बीमारी होती थी, अब जितना कंट्रोल किया बीमारियों को, कंट्रोल भी बहुत किया। पहले चेचक फैल जाती थी तो मर जाते थे लोग, प्लेग फैल गया तो सब मर गए, अब वो सब चीजें कंट्रोल में आ गई, लेकिन नई नई बीमारियां जागृत हो गई। तो हमारा पूरा कल्प ही बहुत सुंदर बीता है, हम बहुत बड़े कुल के हैं, ये हम अपने अंदर नशा लाएं, रॉयल्टी आप ही आ जाएगी। बहुत सुंदर बात थी आज, बताओ आप किसको याद आई आज की मुरली से, देवताओं से भी ऊंचो। और बोलो क्या याद आया, तुम्हारा चेहरा सदा खिला रहना चाहिए, क्यों, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। 1 पॉइंट बाबा तुम्हें, ये बहुत ही अच्छी नशे की बात है और सबको इसे अपने नशे में लाना है, तुम्हें बाप से रजाई मिल रही है। ये नशा हो जाना चाहिए, गुप्त नशा रजाई मिल रही है। तो ये चिंतन में जितना जितना होगा उतना इसका नशा चढ़ेगा, जीवन इसका स्वरूप बन जाएगा और बहुत सारी बातें जीवन से खत्म हो जाएंगी। बहुत लोग जो संघर्ष करते हैं ना धारणा करने के लिए, माया को जीतने के लिए, वो संघर्ष की जरूरत नहीं रहेगी अगर हमें ये गुप्त नशा चढ़ता रहे। कई दिन से आ रहा है, आज भी था, क्या नशा रहना चाहिए? कई दिन से आ रहा है, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है? तुम्हें वेद का बाप मिला है, आज तो ये भी था, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है? तो इस पढ़ाई का भी नशा, हमारी पढ़ाई सबसे बड़ी है जिससे हमें पद भी बहुत बड़े मिलते हैं, पर ये नशा ब्राह्मणों को चढ़ता नहीं है, चढ़ना चाहिए। हमारी पढ़ाई बहुत बड़ी है, एक एक बोल रतन, कल था ना, एक एक बोल रतन। जिन्होंने पढ़ा हो, यहाँ तो कोई बैठा नहीं है वैसा, किसी का सिलेक्शन IAS में हो जाए जिसे कलेक्टर बनना है, उनको उसका चुन लिया जाए उस लड़के को लड़की को, और फिर एक साल की मुश्किल से उनकी ट्रेनिंग होती है 9-10 मास की, वहां वो जाएं, आप उनकी रौनक देखो, उनका अहंकार बढ़ जाता है, बहुतों का अहंकार बढ़ जाता है, लेकिन एक रौनक भी आ जाती है बहुतों के जीवन में। अब इस बड़े पद पे चले जाएंगे हम, इस पढ़ाई से रजाई प्राप्त कर लेंगे, वो भी लंबे समय की, जितने समय की जो कोई चाहे रजाई ले सकता है, 1 जन्म 10 जन्म 21 जन्म, उसके बाद की भी। बाबा ने ये भी बात अव्यक्त में कह दी, तुम्हारी रजाई त्रेता के अंत में समाप्त नहीं हो जाती, वो अंत तक चलती रहती है। ये बड़ा गुह्य राज है। द्वापर युग शुरू हुआ तो भारत 5 बड़े राज्यों में बटा होता था, द्वापर युग से। उनमें से एक राज्य का जो राजा होता था वो सम्राट कहलाता था, आपने बहुत सम्राटों के नाम सुने ही हैं। बाकी 4 और स्टेट होते थे भारत में बड़े, मध्य प्रदेश से लेकर उधर गुजरात, जिसकी राजधानी उज्जैन होती थी, पूरा नॉर्थ दिल्ली और पूरा पहाड़ियों तक ये एक राज्य होता था, बीच में एक होता था, साउथ का एक होता था। साउथ तक तो कोई गया ही नहीं कभी, जिन्होंने भारत पे आक्रमण किए वो कभी भी साउथ तक नहीं गए, इधर इधर ही होते रहे बस, नॉर्थ में ही। तो हमारी राजाई अंत तक चलती रहती है, हमें राजाई संस्कार भी धारण करने हैं। रॉयल्टी किस किस बात में होनी चाहिए, अब रॉयल्टी पे चर्चा करेंगे। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, कई बच्चों को तो ये भी नहीं आता, बोलो, खाना खाना भी नहीं आता। खाना खाना तो सब जानते हैं, मुंह में डालते हैं, खाते हैं, पर रॉयल्टी से खाना खाना और बनाना, जिसकी तो बाबा बहुत महिमा करते हैं, योगयुक्त भोजन बने, योगयुक्त हम खाएं, तो बहुत सारा कल्याण तो इनसे ही हो जाएगा। लेकिन वो सबसे नहीं होता, माताएं भी घरों में भोजन बनाती हैं, सबको पता है कितना योग रहता है, फिर काम में ही बिजी हो जाते हैं। तो खाना खाने में रॉयल्टी, कार्य करने में रॉयल्टी, चलना फिरना उठना बैठना सोना सब में रॉयल्टी। खाना खाने में कैसी रॉयल्टी हो? कौन है हमारे पास एग्जाम्पल बताओ? राजीव है? नहीं जगदीश भाई तो है ही नहीं ना यहाँ, इन्हें किसको दिखाना है? सब बैठे हैं, किसको देखें जो खाना खाना सीख लें? अव्यक्त बाबा को, जिसे मस्ती में है। खाने पे तो ध्यान ही नहीं, दृष्टि दे रहा है सामने वालों को। वैसे भी शिव बाबा तो स्वाद से परे है, खाना तो ब्रह्मा बाबा को होता है, लेकिन बहुत रॉयल्टी नजर आती है ना उसमें, आती है ना, हम लोग जरा फटाफट खा जाते हैं, जल्दी जाना है, 10 ही मिनट हैं, फटाफट खा लो, ये तो सब करते हैं, हम भी कर देते हैं, अभी भी किया, जल्दी आना था, और भी काम थे, 10 मिनट में ही खा लिया, थोड़ा जल्दी खाया, मुझे याद आ रहा था, आज बाबा ने कहा, कईयों को तो खाना खाना भी नहीं आता। तो वो धैर्य मत, धीरे धीरे, वैसे भी भोजन खाने में ये ध्यान रखना है, मुंह में डाला हमने, उसमें क्या क्या मिलता है? लार मिलती है, सलाइवा इंग्लिश में, वो लार जितनी मिलेगी भोजन उतना ही जल्दी हजम होगा, और जितना अच्छा भोजन हजम होगा उसके रस बनेंगे, शक्तियां बनती अंदर में भोजन से। अगर वो लार बहुत नहीं मिली तो वो हजम ठीक से नहीं होगा, पहले ही हजम खराब है आजकल, तो हमें बहुत धीरे आराम से अच्छी तरह लार उसमें मिक्स हो जाए, उसको दवाई मानकर आराम से योगयुक्त होकर खाना चाहिए। वैसे योगयुक्त होकर कुछ भी कर्म करना स्वयं में रॉयल्टी है, ठीक बात है या नहीं? चाहे हम योगयुक्त चल रहे हों, रॉयल दिखाई देंगे, हम योगयुक्त होकर बात करते हों, हम रॉयल दिखाई देंगे, हर जगह योगयुक्त होकर अलग अलग काम करेंगे, हम लेटेंगे भी ना योगयुक्त, तो हमारा लेटना भी रॉयल दिखाई देगा सबको। तो हम कुछ रॉयल्टी सीखेंगे, और इसके पीछे गुण कौन सा काम करेगा बोलो? वो व्यक्ति बहुत रॉयल नजर आता है जिसमें ये गुण होता है। हाँ, पवित्रता तो है ही, प्योरिटी इज रॉयल्टी, वो तो ठीक है। धैर्यता, धैर्यता भी, साथ में नम्रता भी, मृदुता भी, मीठे बोल भी, लेकिन धैर्य, धैर्यवत सुनना, धैर्यवत बोलना, धैर्यवत होके कर्म करना, इससे रॉयल्टी स्वतः ही आ जाती है। चेहरों पर रॉयल्टी होनी चाहिए, इसके लिए बाबा ने कह दिया, प्योरिटी तुम्हारी रॉयल्टी है, प्रसन्नता से रॉयल्टी होती है, और जितना हम योगयुक्त रहते हैं रॉयल्टी चेहरे पर जीवन में स्वतः ही आ जाती है। हम सेंसिल भी होते हैं, आप एक उस व्यक्ति का चेहरा देखो जो क्रोध में बात कर रहा है, और एक उस व्यक्ति का चेहरा देखें जो वो धैर्यवत प्रेम से आत्मिक दृष्टि से अपने स्वमान में स्थित होकर बात कर रहा है, दोनों में अंतर दिखाई देगा ना। क्रोध से बात करने वाला डांटेगा भी, उल्टे सुलटे शब्द भी बोलेगा, संबंध भी बिगाड़ लेगा, फिर पछताएगा भी। और जो धैर्यवत नम्रचित्त होके बात करते हैं सब स्वीट रहता है। तो हमें रॉयल्टी बहुत सीखनी है। कल से बाबा की मुरली में चल रहा था बोल पर, याद है? हाँ, ऐसे वैसे बोल बोलना माना पत्थर मारना। आज तो बाबा ने बहुत अच्छा कहा, तुम रूप बसंत हो, योग लगाते लगाते तुम रूपवान बन जाते हो, याद है? माना आत्मा ही रूपवान हो गई ना, ब्यूटीफुल हो गई, आत्मा पवित्र हो गई, तो उससे सब कुछ सुंदर हो जाता है। और ये भी कहा, ये बहुत ही अच्छी गुह्य व्रत है, योग लगाते लगाते तुम देही अभिमानी बन जाते हो। तो देही अभिमानी स्थिति बहुत अच्छी प्योर स्थिति हमारी रॉयल्टी है। तो बातचीत करना भी रॉयल हो, और इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात सिखाई, रॉयल लोग कैसे बोलते हैं, कम बोलते हैं, धीरे भी, ऐसे नहीं इधर बोल रहे तो गेट के बाहर आवाज सुने, धीरे भी कम भी। बाबा की इस पर शुरू में बहुत अच्छी अच्छी मुरलियां चली। जो बात दो शब्दों में कही जा सकती है, पांच शब्दों में कही जा सकती है, उसके लिए 50 शब्द प्रयोग न करें। ये बहुत सुंदर कला है। कई लोग बात थोड़ी कहेंगे और शब्द करेंगे 100 यूज, और फिर भी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये आखिर कहना क्या चाहते हैं। कोई चाहिए क्या भाई? बोलो, बोल दो ना। नेपाल की कमला बहन है? नहीं है, कमलासन पर है, जाओ। तो और हमें ये सीखनी है कला, ज्यादा से ज्यादा बात थोड़े शब्दों में कह दें। बाबा की बात देखो, एक एक लाइन में रहस्य भरी बातें कह देते हैं। और प्यार कितना है शब्दों में। आप साकार बाबा की मुरली सुनो, कोई मुरली ऐसी हो जिसमें बाबा शिक्षा दे रहे हो, क्रोध पे बोल रहे हो, इतना प्यार आपको दिखाई देगा। बच्चे क्रोध नहीं किया करते, जो ये शब्द हमें लगते हैं ना, कड़वे वचन बोलना, माना पत्थर वो मारना, उस वो बड़े प्यार से बाबा कहते थे। ऐसे ढंग से नहीं कि वो पत्थर ही मार रहे हो, ऐसे ढंग से कहते थे कि सुनने वालों को रियलाइज होता था कि बुरा बोलना गलत है। हमारे मुख से रतन ही निकलने चाहिए, अमृत निकलने चाहिए, क्योंकि अच्छी बात अगर अच्छे शब्दों में नहीं कही जाती, अच्छी बात यदि अच्छे समय पर नहीं कही जाती, तो अच्छी बात भी अपनी अच्छाई खो देती है। सब इसका बहुत ध्यान रखेंगे, अच्छी बात हम करें, माताएं अपने बच्चों को भी अच्छी बातें सिखाएं, लेकिन अच्छे शब्दों में, डांट के नहीं, अच्छे टाइम पे, सब समय नहीं, ऐसे समय जब वो सुनने को तैयार हो, जिसको हम भाषा में कहा जाएगा जब उनका मूड अच्छा हो, सुने हमारी बात की वैल्यू भी दें वो। अगर हम बहुत अच्छी बात ऐसे वैसे कह दिया तो हमारी उस सुंदर बात की वैल्यू भी खत्म हो जाती है। तो आज बाबा ये भी कह रहे थे, तुम्हारा ये जीवन बहुत अमूल्य है, अपने शरीर के लिए भी सभी ध्यान दें। मुरली में आ चुका है संडे को, कई बच्चे अपने शरीर से नफरत करने लगते हैं, बीमारी होती है ना, छूटे ये शरीर, तंग कर दिए इसने तो हमें, ये तो ठीक ही नहीं होता है, सब डॉक्टर थक गए, हार मान गए हैं। ऐसी बहुत बहनें कहती हैं, कोई डॉक्टर काम नहीं कर रहा, सब हार मान गए, कुछ हो ही नहीं रहा हमारा। एक कोई आया आज, मुझे कहा मेरा भतीजा है 12 साल का हो गया, लेकिन उसका ब्रेन काम ही नहीं कर रहा, डेवलप ही नहीं हुआ, 12 लाख खर्च कर चुके हैं, कुछ नहीं होता। मैंने कहा 12 करोड़ कर लो अगर हो, वैसे का वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि ब्रेन को डेवलप करने की दवाई डॉक्टरों के पास नहीं है, ये तो आत्मा ने जैसे कर्म किए हैं उस अनुसार उसको फल मिला है, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें कुछ विधि करनी होती है ऐसे केसेस के लिए। तो अपने शरीर से तंग न होके इसे नफरत नहीं करनी है। कई लोग सोचते हैं बाबा तो शरीर से नफरत दिलाते हैं ना, कि तुम्हारा शरीर तो क्या क्या कहते हैं बाबा सड़ा हुआ, विकारों से पैदा हुआ, गंदगी है इसमें तो हैं? क्या बोला? चट्टियों वाला है तो लगी हुई कईयों को तो बहुत बहुत चट्टियां, चट्टियां वाला पीस लगा दिए ना, ऑपरेशन कर दिए हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि शरीर से नफरत करो। एक कुमार आया मेरे पास, छोटे लाल आपको हैरानी होगी, और वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। घर जाना है इसलिए मुझे सुसाइड करना है, मर जाना है घर जा चलूंगा। बाबा कहता जल्दी चलो। मैंने कहा तुम्हें किसने बता दिया कि सुसाइड करके घर जाना? बाबा ने कहा कभी ऐसा नहीं, जाना है जल्दी, मरना है बाबा यही कहते। बहुत समझाने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी बात से सहमत नहीं है। मैंने बहुत समझाया ये शरीर कितना मूल्यवान है, घर जाना ही तो केवल हमारा लक्ष्य नहीं है ना, भरपूर होकर जाना है, राजाई संस्कार बनाकर जाना है, बड़े से बड़ा वर्षा बाबा से पाना है फिर जाना है। ऐसे थोड़ा है कि मर के चल दिए। ये मैंने उसे समझा तुम घर जाओगे ही नहीं, बीच में रोक दिए जाओगे। और एक बात और सबको मालूम होनी चाहिए, जो लोग सुसाइड करते हैं ना, कभी कभी ऊपर भटकती आत्माएं उन्हें बीच में ही कंट्रोल कर लेती हैं, अपना साथी बना लेती हैं, और तब उसकी भटकन और उसका उसका जो कष्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। और ये सुसाइडल केस, सुसाइड करने वाले, मरने वाले, इनकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है दुनिया में। इसलिए आत्माएं भटक रही हैं, और जब वो देखती हैं कोई नीचे से आ रहा है उसको अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। ये बहुतों के अनुभव हो गए हैं, हमने उनसे ही सुने हैं, तो हमें पता चला कि ये भी हो रहा है। इसलिए शरीर से नफरत नहीं। अगर हम शरीर से नफरत करेंगे अपने, मान लो घुटने दर्द है, अब घुटने दर्द ऐसे है जो हर कदम पे होगा ना, भारी लगेगा, छूटे ये शरीर, नया शरीर मिले, अच्छे घुटने मिले, बाबा खत्म करो मेरे शरीर को, तो क्या होगा? चाबुक मार, बाबा ने कहा ना चाबुक मार। बाबा उस दिन हंसते हंसते विदेशियों को बड़ी गहरी गहरी बात सुना रहे थे। तो घुटने दर्द ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि हम बैड एनर्जी दे रहे हैं अपने शरीर को। और सिंपल बात करें, ये शरीर बहुत मूल्यवान है। अपने घुटनों से बात करें, तुमने मुझे 50 साल साथ दिया, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, अब जल्दी ठीक हो जाए और 30 साल साथ दे दो। उसे बात करो तुम बहुत अच्छे हो, इतने बड़े शरीर को अपने वजन को संभाले रखे हो, बहुत अच्छे हो, मेरे साथी हो, गुड एनर्जी जाएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अपने शरीर को भी अच्छे वाइब्रेशंस देना, अच्छे संकल्प देना, यह शरीर को प्यार करना। वो प्यार अलग है जो देवान का प्यार है, लेकिन शरीर को गुड वाइब्रेशंस देना ये बहुत आवश्यक है। कल एक साइंटिस्ट मेरे पास आया, उसको बड़ी भावना हो गई, था तो बुजुर्ग DRDO का साइंटिस्ट, अच्छी पोस्ट से रिटायर हुआ, उसको बड़ी भावना, कहता तुम्हें मसाज करनी मुझे। अरे मैंने कहा नहीं भाई, तुम वैसे भी बुजुर्ग हो, मेरे पास मसाज करने वाले हैं, मुझे जरूरत भी नहीं। वो तो पीछे पड़ गया, करनी है मुझे, आखिर एक बार करके ही गया दोपहर में कल। तो मुझे कहा हमारी जो बहने हैं ना बहुत बीमार रहती हैं, अब ज्ञान में आ गया था, घूमती भी नहीं है, और हमारी दीदी तो कहती है ये प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना है तो देहाभिमान है, हमें नहीं करना है। बोलो टीचर बहने बैठी है, देहाभिमान है या कुछ और? यह आवश्यकता है, ये ठीक कहा आपने, ये समय की आवश्यकता है। इसको कहते हैं हेल्थ अवेयरनेस, अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक होना। अभी हमें बीमारी लग जाए तो वो देहभान लाएगी या देहाभिमानी बनाएगी? देवान बढ़ा देगी, उस पर ध्यान रहेगा सारा समय। और हम एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, कुछ अच्छा अपना ध्यान रखें शरीर का, वो चीज न खाएं जो हमें नुकसान दे रही, वही खाएं जिससे हम हेल्दी रहेंगे, तो देहाभिमान नहीं है। कई लोग सोचते हैं भाई सब कुछ खा लेना चाहिए, ये सब देहाभिमान है, ये नहीं खाएंगे ये खाएंगे, देहाभिमान नहीं, हेल्थ अवेयरनेस, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता है ये कि हम वो चीज न खाएं जो हमें कष्ट दे। पीछे दवाइयां खाना, परेशान रहना, रात को नींद ना आए, शरीर में एसिड हो जाए, गैसेज हो जाए, उसे परेशानी बढ़े, उससे अच्छा है ना पहले ही ध्यान रखें। तो हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, ये देह अभिमान नहीं कहलाता। देह को तंदुरुस्त रखना आवश्यक है क्योंकि इस देह के द्वारा ही तो हम अपनी साधनाएं भी करेंगे ना। हम बीमार रहते हो तो योग साधना में मुश्किलात तो होगी ही, भले ही कोई कितना भी अच्छा करना जानता हो फिर भी वैसा तो नहीं हो सकता ना जैसा एक स्वस्थ शरीर में होता है। तो शरीर को भी हम बहुत ध्यान देंगे। और बाबा ने जो एक अच्छी बात कही उस पर मैं आप सभी को ले चलता हूँ, जो बहुत ही सुंदर बात है। विदेशियों से बात करते हुए कहा, विदेश वालों में बचपन से ही क्या नहीं होता, सहनशीलता नहीं होती। सहनशीलता न होने से क्या करते हैं, बदलते हैं। पति ने पत्नी को बदला, पत्नी ने पति को बदला, बनती नहीं ना आपस में, छोड़ो अलग हो जाओ, फिर दूसरे के साथ रहेंगे, दूसरी शादी, फिर वहां नहीं बनी बदलो, फिर तीसरे के पास, क्या हाल होगा इससे जीवन का, खुशी नहीं, शांति नहीं, चैन नहीं, उदासीनता, आखिर में अकेले रह जाते हैं। तो बाबा ने हम सबको कितनी अच्छी बात सिखाई देखो, और हमारे भारत की ये कितनी सुंदर बात है। परिवार रहते हैं यहाँ, ये डिवोर्स के केस, तलाक के केस तो अब होने लगे ना, 10-12-15, मुश्किल से 15 साल हुए होंगे। उससे पहले भारत में तलाक देना तो बहुत बुरा माना जाता था, लोग उसको बुरी नजर से देखते थे, अब तो कॉमन हो गया है। क्यों हो गया, स्वयं को नहीं बदलते। अगर हम स्वयं को बदलने लगे तो ये बड़ी बड़ी समस्या जो समाज में फैल रही है ये समाप्त हो जाएंगी। एक ही चीज से आप देखो, इस पे थोड़ा सा विचार करो। तलाक हुआ पति पत्नी का, उनको 2 बच्चे, एक उसके पास रह गए एक उसके पास, बच्चों का जीवन कैसा होगा, माताएं जानती है ना, कोई कोई इस अनुभव से गुजरे होंगे। बच्चों पर उसका कितना बुरा असर होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है बहुत ज्यादा। भावी पीढ़ी हमारी उससे प्रभावित हो रही है, उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। फिर युवक लोग देखो व्यसनों में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें माँ बाप से अच्छी सीख नहीं मिली, उन्हें असली प्यार नहीं मिला है माँ बाप से, कुछ अच्छी गाइडेंस नहीं मिली है, तो बुरे संग में आके कहीं भी फिसल रहे हैं। तो हमें स्वयं को बदलना है। विशेष रूप से मैं ध्यान दिलाऊंगा, 2-4 दिन से मेरे पास कुछ लोगों की ऐसी बातें आ रही हैं, बहने मेरा पति मेरे से दूर चला गया, शादी तो अभी हुई थी, फोन भी नहीं उठाता। एक बहन बहुत दुखी, सवेरे से मैंने 100 फोन कर लिए भाई जी, उठाता ही नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, जब मैंने पूछा क्या हुआ तो बेचारी नम्र हो गई और बताया मैंने लड़ाई कर ली थी, बहुत बुरा बोल दिया उसको, अब मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब वो चला गया है दूर कहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, 2-3 दिन पहले ही, अभी की बात है। अब मेरा फोन भी नहीं उठाता, मेरे से बात भी नहीं करता। मैंने कहा ज्ञान में कौन है, ज्ञान में मैं हूँ, पति वो नहीं है। मैंने कहा पति अच्छा या तुम, मैं उसको थोड़ा हल्का करके मैं पूछने लगा। मैंने कहा तुम ज्ञान लिया और बोल भी नहीं सुधारे, अपने पति को बहुत बुरा बुरा बोला, बेचारे से सहन नहीं हुआ, हर्ट हुआ बहुत, दूर चला गया है, क्या करूं। मैंने कहा 1 हफ्ता उसे फोन न करो, आप ही आ जाएगा। कहा 1 हफ्ता, अब उससे रहा नहीं जा रहा, तो 5 मिनट ठहरने को तैयार नहीं, बार बार फोन कर रही है उसे, बार बार फोन कर रही है। सोचो इस बात पे, ऐसी 2-4 सच्ची घटनाएं नजदीक नजदीक में आई। एक ऐसी विदेश की बहन, उसका भी यही केस, लड़ाई की बहुत पति से, अब वो अलग हो गया है, बात करता है लेकिन कहता है भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, डिवोर्स लेना हो लो नहीं तो तुम उधर रहो, मैं अपने ढंग से रहूंगा। अब बहुत दुखी है, कहा मैं बहुत माफी मांग ली, सवेरे उठ के योग करती हूँ, माफी मांगती हूँ, पर वो मुझे माफी नहीं करता, और क्या करूं। फिर मुझे कहते हैं तुम हमारे लिए योग कर दो। मैंने कहा लड़ो तुम और योग मैं करूं, ठीक बात है, चलो मैं तो कर दूंगा, मैं ये तो नहीं कहता नहीं करूंगा। सोचने की बात है, एक क्रोध और बुरे वचन बोलना कितना भारी पड़ जाता है जीवन के लिए। बोल तो लिया लेकिन अलग रहना सहज काम है क्या, फिर लड़ेंगे किससे। एक राजकोट का बुजुर्ग व्यक्ति हमारे पास आया था, हमने बुलाया था, कोई ट्रीटमेंट करता है वो, तो हमने विज्ञान सरोवर में 15-20 लोगों की कराई, मुझे भी करता रहा। तो आते ही कहा मेरी युगल से बात करो और बता, इसको गुस्सा बहुत आता है, समझा देना कुछ, पर बताना नहीं कि मैंने कहा। हमें कहो तो आप ही समझ जाएगी ना तुमने कहा है। तो वो ऐसा ही अच्छा हुआ कि उसने फोन मिला के दिया और वो आप ही बोलने लगी, भाई जी मुझे गुस्सा बहुत आता है क्या करूं। चलो उससे तो बात हुई, अब इसकी बात सुनो। अभी ये 1.5 साल से ज्ञान में, वो 15 साल से ज्ञान में, ये कहता है मुझे कभी गुस्सा आता ही नहीं, बचपन से ही नहीं आता। वो गुस्सा करती है मैं हंसता रहता हूं और गुस्सा करती है। अब हंसी की बात एक सुनो, वो मुझे कहती है या तो तुम मेरे से लड़ो या किसी को लाओ जो मेरे से लड़े। तो हमें अपने को बदलना है, अपने को बदलना है, अपने क्रोध को बदलना है, अपने व्यवहार को बदलना है, शब्दों को बदलना है। बाबा ने बहुत अच्छी बात सिखाई, जो बात गलत शब्दों से कही जाती है वो अच्छे शब्दों से प्यार से भी कही जा सकती है, और गलत शब्दों से कही गई बात का प्रभाव नहीं होता है, दूसरा व्यक्ति उल्टा बोलेगा। हम ये भी कहे ना भाई बात तो थोड़ी प्यार से किया करो, तुम करो पहले, सीधा यही जवाब मिलेगा। और अगर राइट टाइम पे उसको अच्छे शब्दों में कहा जाएगा तो आत्मा स्वीकार करेगी कि ये सच है, हमें अच्छे शब्दों से ही बात करनी चाहिए। तो सभी बाबा की मुरलियों का बहुत अच्छा रस जीवन में प्राप्त करें, और रोज की मुरली का अभ्यास उसी दिन कर लेना है। सभी इस बात पे ध्यान दें, सेवाधारी भी बहुत भाई बहने बैठे हैं, आप यहाँ आते हैं बहुत अच्छा सुख लेने, इसलिए आते हैं ना, सेवा भी करेंगे, और यहाँ सबसे ज्यादा सुख है इन वाइब्रेशंस में, आत्मा शीतल हो जाए, बहुत अच्छे अनुभव हो जाएं, ये लक्ष्य रहता है। तो रोज की मुरली ही बहुत सुंदर है, रोज की मुरली में बहुत रस है, मुरली सुनते हुए भी उस रस को प्राप्त करेंगे, और दिन के लिए कोई भी 2-3 बात उसमें से याद रख लें, जिसका नशा रहे, जिसपे चिंतन होता रहे तो मन व्यर्थ से मुक्त रहेगा, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। थोड़ी सी झलक आज के स्लोगन की, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। बहुत ही सुंदर बात है, सचमुच हमें भगवान ने पालना दी है, प्यार भी बहुत दिया, बहुत कुछ सिखाया, सिखाना सबसे बड़ी पालना है ना। कई बच्चे आते हैं युवक, हमारे माँ बाप ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई, हम इधर उधर हुए ही नहीं जीवन में, तो वो अपने माँ बाप का बहुत सम्मान रखते हैं, माँ का बहुत रखते हैं। हमारी माँ ने हमें बचपन से अच्छी अच्छी बातें सिखाई, प्यार भी बहुत दिया, डांट के बातें नहीं सिखाई, बहुत प्यार से सिखाई। और भगवान हमें रोज प्यार करता है, पालना मिल रही है उसकी हमें, उसके प्यार को हम उसकी मुरली से अनुभव किया करें। सभी ध्यान दें, बाबा कोई आके एक एक के सिर पे हाथ नहीं रखेगा, प्यार से वो तो सूक्ष्म वतन में हम अनुभव कर सकते हैं, पर उसकी मुरली में उसका प्यार झलकता है। सभी इस बात पे बहुत ध्यान देंगे तो हमें परमात्म प्यार की पालना बहुत मिली है, और यदि भगवान ने हमसे प्यार किया है तो हम बोलो उसके प्यार में मग्न होने का अनुभव करें, ये होगा सहज योग। जिसको बाबा से जितना प्यार मिला है, रोज मिलता है, सवेरे मिलता है, शाम को मिलता है, मुरली से मिलता है, सूक्ष्म रूप से मिलता है, तो जिसको बाबा का बहुत प्यार मिला है, जिसको बाबा से बहुत प्राप्तियां हुई हैं, सबको हुई हैं, ऐसा कोई बाबा का बच्चा नहीं जिसको बहुत प्राप्तियां ना हुई हों, है कोई ऐसा? हुई है ना सबको? उन्हें याद करो। जीवन बदल दिया बाबा ने, याद करें जिस दिन हम बाबा के पास आए उससे पहले हमारा जीवन कैसा था, उसके बाद कैसा हो गया, और तेजी से बदला सब कुछ। इन सब चीजों को याद करेंगे तो उसके प्यार में मन मगन रहेगा, और ये ईश्वरीय प्यार हमारे मन को एकाग्र कर देता है, हम सहज योगी बन सकते हैं। पीछे बाबा ने ये नाम दिया था कि ये योग केवल बुद्धि योग नहीं है, प्रेम योग भी है, जिसमें आत्मा बाबा के प्यार में मग्न होती है, उससे बातें करती है। देखो आप ध्यान दें, बहुत लोगों का राम से प्यार, बहुत लोगों का श्री कृष्ण से प्यार, किसी का हनुमान से प्यार, क्यों? ध्यान दें क्यों है? और देवी देवताओं से कम होता है, इनसे ज्यादा है, क्योंकि इनकी कहानियां बहुत प्रचलित हैं। उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, ये किया, तो उनके श्रेष्ठ कर्मों के कारण हर व्यक्ति को उनसे प्यार हो जाता है। गणेश के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित नहीं है, अब ध्यान दें, उससे प्यार नहीं होगा, उसकी केवल स्थापना करेंगे भक्त ताकि विघ्न नष्ट हो जाएं, पीछे भूल जाते हैं, कोई उसे याद नहीं करता। श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान भी, और भी कुछ देवी देवता ऐसे जिनकी बहुत गाथाएं हैं, जिनके ऐसे वर्णन है कि उन्होंने मनुष्य को कितनी मदद की है, उनसे हमारा प्यार रहता है। तो बाबा ने हमें क्या क्या दिया, जितना जितना याद करेंगे उससे प्यार बढ़ता जाएगा, चित्त एकाग्र होता ही जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लोग चलते फिरते सुना देते हैं बाबा की मदद के। मैं एक अनुभव पहले भी यहाँ सुनाया, आप सब फिर सुन लें, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, दो चार बार सुना चुका हूँ मैं। चलो वो अनुभव तो मैं पहले भी सुना, एक दूसरा अनुभव सुना देता हूँ अभी अभी का। परसों तरसों इस बार में मैंने क्लास कराई तो एक माता ने कहा मुझे अनुभव सुनाना थोड़ा सा, आओ। क्या सुनाया? मेरी लड़की की शादी थी, मेरे पास थे केवल 13,000 रुपए। मैंने पर्स खोला, देखा 13,000, मैंने पर्स खोला रखा और बाबा को कहा बाबा 13,000 हैं केवल, आप बैठ जाओ इसमें आके। उसके शब्द हैं ये, शादी आपको करानी है, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल 2 दिन थे। और उसने सुनाया 20 लोग ऐसे आए जो संबंधी थे, जो कभी मुझे ज्ञान में चलते देख के अच्छा नहीं कहते थे, और शादी में वो आए और पैसा कितना हो गया, सोच सकते हैं आप सुशील? 11 लाख, 11 लाख। क्योंकि मैं क्लास करा रहा था उस चीज पे समर्पण भाव, तो उसने सुनाया कि मैंने अपनी वो समस्या बाबा को अर्पित कर दी थी। तो मैं आप सबको भी ये कहूंगा और खुद को भी कहता हूं, हम बाबा को समझते चलें। कल भी था ना, कोटों में कोई, करोड़ों में कोई मुझे जानता है, बच्चों में भी हम उसे समझते चलें। वो क्या है जो कह रहा है अपने बोझ सारे मुझे दे दो, मस्त हो जाओ, मैं करूंगा। लेकिन हम देते नहीं ना, क्योंकि हमें उसकी शक्तियों का पूरा पता नहीं है। सब विचार करेंगे इस पे, वो चाहे संकल्प करे तो यही मधुबन के आंगन में हीरो की बरसात होने लगे, सोना बरस जाए, है या नहीं। लेकिन हम उसे पहचानते नहीं इस रूप में, क्योंकि बाबा ने अपने को छुपाए हुए हैं। लेकिन ऐसे बहुत अनुभव आते हैं जब समर्पित करते ही काम सरल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। ऐसे बहुत अनुभव लोग बीमारियों में भी सुनाते रहते हैं। है एक मिनट भाई, वो सुन लो अनुभव। एक कुमार मेरे साथ साथ चलने लगा शांति वन में, रूम से मैं निकला मुरली के लिए, कहा मुझे एक अनुभव सुनाना है भाई जी। अरे मैंने कहा भाई बाद में आ जाना, अभी तो जा ही रहा हूँ। कहा नहीं नहीं अभी सुन लो। क्या? मेरे को ऐसी बीमारी थी, डॉक्टरों ने रात को कह दिया तुम्हारा जीवन बचा है केवल 4 घंटे का। किसी को बुलाना है परिवार वालों, कोई तुम्हारा संबंधी है? मैंने कहा है, उसको मैं आप ही बुलाऊंगा, उसे बाबा है भगवान, मैं उसको बुलाता हूँ। उन्होंने मुझे रख दिया जहाँ आईसीयू में मृत्यु के लिए, और मैंने बाबा को बुला लिया कि बाबा मैं आपका हूँ, ले चलना हो ले चलो, यहाँ रखना हो रखो। सवेरे डॉक्टरों की टीम आई, मैं जिंदा था, और वो हैरान हो गए ये जिंदा कैसे है, और कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने उसे कहा कि बस ये जीवन अब बाबा ने तुम्हें दिया है, अब ये उसका है तुम्हारा नहीं, उसके कार्यों में लगा दूं। बस इतने में क्लासरूम आ गया, हॉल बड़ा हॉल हम पहुंच गए। ये अनुभव है मनुष्यों के, जो विश्वास करता है और बाबा की शक्तियों को जानता है। देखो इससे बड़ा चमत्कार क्या, 4 घंटे, 4 मास नहीं, 4 घंटे का जीवन बचा है। और वो कहां चली गई सब बीमारी? कुछ चेकअप हुआ था, जैसे प्लेटलेट डाउन हो जाती है ना, उसका भी कुछ डाउन हो गया था, डाउन हो ही रहा था कि बस 4 घंटे में 0 पे आएगा तुम्हारी मृत्यु, और वो कैसे बढ़ के ठीक हो गया किसी की समझ में नहीं आया। तो बाबा को जानकर उसके प्यार में मग्न हो जाए, ये सहज योग है। ओम शांति।
भर ली मिटले।